ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम् स्कंद सात अध्याय छे श्लोक संख्या एक। श्री प्रह्लाद उवाच, कौमारः आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभम् मानुषम् जन्म तद् अपि अध्रुवम् अर्थदम्। श्रीप्रह्लाद उवाच, कौमाराचरेत् प्राज्ञो, कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान्निह, धर्मान् भागवतान्निह दुर्लभम् मानुषम् जन्म, दुर्लभम् मानुषम् जन्म तदप्यद्रुवमर्थदम्, तदप्यद्रुवमर्थदम्। श्रीप्रह्लाद उवाच, कौमाराचरेत् प्राज्ञो, कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह, धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम् मानुषम् जन्म, दुर्लभम् मानुषम् जन्म तदप्यद्रुवमर्थदम्, तदप्यद्रुवमर्थदम्। श्रीप्रह्लाद उवाच, कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह, दुर्लभम् मानुषम् जन्म तदप्यद्रुवमर्थदम्। प्रह्लाद उवाच, कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह, मानुषम् जन्म तदप्यद्रुवमर्थदम्। श्रीप्रह्लाद उवाच, कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह, दुर्लभम् मानुषम् जन्म तद्यप्यद्रुवमर्थदम्। श्रीप्रह्लाद उवाच, कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह, दुर्लभम् मानुषम् जन्म जप्यध्रुवमर्थदम्। शब्दार्थ इस प्रकार हैं, श्री प्रहलाद उवाच। प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमारः बाल काल में आचरेत अभ्यास करे प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति धर्मान वृत्तिपरक कर्तव्य भागवतान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा है, यह इस जीवन में दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ मानुषम मनुष्य का जन्म तत् वह अपि भी अद्रुवम नश्वर अर्थदम अर्थ से पूर्ण। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति करें, कि अभ्यास भक्ति कार्यों को अभ्यास करें। अभ्यास करने में इस मनुष्य शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नश्वर होता है, होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभ काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूप से भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसे कि भगवत गीता में पुष्ट की गई है, स्वल्पमपि सर्वस्यात्रायते महतो भयात्। इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आध्यात्मिक सभ्यता आधुनिक सभ्यता मनुष्य समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनाने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती हैं कि जन्म संख्या ना बढ़ा देने के लिए वे गर्भ में ही उन बच्चों को मार दें, और यदि दैव योग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह लोग कुकर सुकरों की भांति जी रहे हैं और 84 लाख निम्न जीवन योनियों में देहांतर करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में ना गिरे, जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं। भागवत धर्म में श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवन पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। सारे विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवद गीता के आदेशों के अनुसार उन्हें अपना अपना जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो जाए। इस कलयुग के लिए भगवान भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरेर नाम हरेर्नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। ओम ज्ञात विरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामैहं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बड़ा सुंदर अध्याय है और महत्वपूर्ण अध्याय है। जिस अध्याय में प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल के जितने भी बालक हैं, असुर बालक हैं, उन सबको शिक्षा दे रहे हैं। पिछले अध्याय के अंत में दो श्लोकों में कहा गया है, जैसे प्रहलाद महाराज ने उन सब बालकों को कहा तो आप आओ मुझसे कुछ सुनो, तब क्या हुआ, तेतु तत् गौरवात् सर्वे, सब जितने ही बच्चे हैं असुर बच्चे हैं लेकिन गौरवात् सर्वे, बहुत बड़े आदर के साथ क्या किए, प्रहलाद महाराज के आजू बाजू में एकदम बिल्कुल आवृत हो गए, आवृत होके बड़े प्रेम से इक्षण उनको देखने लगे, हृदय क्षण अपने हृदय से अपनी आंखों से बड़ा प्रेम से प्रहलाद महाराज को दर्शन कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज का इस प्रकार का गुणावली नारद जी कहें पहले भी और आगे भी हम सुनते हैं प्रहलाद महाराज के गुणों को। उनका स्वभाव ऐसा था कि उनके वाणी में इतनी मधुरता थी, खाली बोलने मात्र से असुर बालक भी उनके प्रति इतना आकृष्ट हो गए, हृदय क्षण उनके हृदय से उनकी आंखों से अपने प्रेम को व्यक्त करते प्रहलाद महाराज की ओर देखने लगे। कोई कहे ये तो असुर थे, लेकिन असुर होने पर भी बालक थे, तो बालक का स्वभाव होता है सरलता होता है। अगर कोई उनको प्रेम से कुछ कहता है तो तुरंत बालक सुन लेता है। और कोई कहे नहीं उनके तो गुरु थे संड और अमरक, उन्होंने बहुत सारा शिक्षा दिया, इंद्र तृप्ति का शिक्षा दिया, कितना भी इंद्र तृप्ति का शिक्षा भी दिया क्यों ना हो, लेकिन क्या हुआ ऐसा वर्णन आया है त्यक्त्वा क्रीड परिच्छाद्यः, वो सारे प्रकार की खेल कूद को त्याग करके बाल आदिश्य अदूषित दियो अदूषित दिय, उनका दिया उनका बुद्धि जो है अदूषित था, उनके द्वारा इंद्र तृप्ति का प्रभावित, जैसे बच्चे को आप कितना भी बड़ा बड़ा चीज समझाओ इंद्र तृप्ति करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या है वो सब चीज समझ में नहीं आता उनको, तो अदूषित दी हो उनका दिया उनके बुद्धि दूषित नहीं था। ये सब बालक जो है आवृत होके बैठे प्रहलाद महाराज को, तो ऐसा वर्णन आता तान आहा करुण मैत्र तान आहा, प्रहलाद महाराज ने उन सारे बालकों को आहा मतलब कहा। तो क्या कहा इस अध्याय में क्या कहा उसका वर्णन है, लेकिन किस भाव से कहा उसका वर्णन ये दो शब्दों में वर्णन हुआ है पिछले श्लोक में या पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में, करुणा मैत्रहा। जब तक हृदय में करुणा की भाव नहीं रहता है तब तक हम दूसरों की हित के बारे में नहीं सोचते। प्रहलाद महाराज के हृदय में उन सारे बालकों के प्रति अति करुणा की भाव थी। मान लीजिए करुणा की भाव भी है लेकिन करुणा दिखाने के लिए लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रयास करेंगे लेकिन मित्रता की भाव नहीं है तो वो शिक्षा लोग स्वीकार नहीं करेंगे। भले आप कितना भी लोगों को दया दिखाओ उनको दया दिखाने के लिए उपदेश दो तो उपदेश स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए स्वभाव है हमारे जीवन में भी, कभी कभी बच्चे माता पिता का बात नहीं सुनते लेकिन मित्र का बात सुन लेता है कि नहीं, कभी कभी माता पिता जो है वो मित्र को बोलते जरा इसको समझाओ है कि नहीं। वो मित्रता में ऐसी एक गुण है कि भले ही उसको मानता नहीं है उसको स्वीकार भी नहीं करता वो बात उसको जमता भी नहीं है लेकिन फिर भी मित्र तुम बोल रहे हो ना मैं स्वीकार करता हूं, तो मित्रता में इस प्रकार का स्वभाव है। इसलिए ऐसा वर्णन आता है एक शिक्षा गुरु होता है उनको मित्र बन के रहना चाहिए शिष्यों के प्रति, शिक्षा भी देना चाहिए और मित्र भी होना चाहिए, मित्रता की भाव भी होना चाहिए। जैसे दीक्षा गुरु होते हैं उनको तो थोड़ा सा एक रिजर्व भावना एक गंभीर भावना रखना चाहिए शिष्यों के प्रति, और शिष्यों को भी थोड़ा सा नजदीक भी और दूर भी रहना चाहिए। लेकिन शिक्षा गुरु के साथ में बैठना खाना पीना कोई एक बार मजाक भी कर सकते हैं क्योंकि एक मित्र होता है, मित्र जैसे व्यवहार होता है उस प्रकार का व्यवहार ये जरूरी है अगर कोई शिक्षा देना है तो कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो। तो प्रहलाद महाराज में इधर ये दोनों बातें पाई गई हैं, एक अति करुणा जो है उस व्यक्ति के ऊपर दिखाया जाता है जो आपसे निम्न है, लेकिन साथ साथ में निम्न होने पर भी ये विशेष बात यह है कि उनके अंदर क्या थी मैत्री मित्रता की भाव थी। तो ये मित्रता की भाव की वजह से महाभागवतो सराह, तो महाभागवत प्रहलाद महाराज जो है उनका वर्णन हुआ है वो महाभागवत, लेकिन साथ में वो असुर होने पर भी असुर परिवार में जन्म लेने पर भी प्रहलाद महाराज महाभागवत है। तानाहा इन बच्चों को उन्होंने कहा और किस भाव से कहा, अति करुणा से और मित्रता की भाव से कहा। तो क्या कहा उसका वर्णन है पूरा अध्याय वही प्रवचन है, प्रहलाद महाराज का प्रवचन है। देखिए प्रहलाद महाराज जैसे प्रवचन शुरू किए बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, प्राय सही भक्तों के श्लोक याद है या हुआ रहेगा, याद नहीं तो करना चाहिए। तो ये श्लोक में सबसे पहला प्रहलाद महाराज ने कहा आचरेत धर्म सीधा इंस्ट्रक्शन, उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, सीधा उन्होंने बच्चों को कहा धर्म का आचरण करो खेल कूद त्याग करो। अगर कोई बच्चे को ऐसा कहे कितना गुस्सा होता है बच्चे को, लेकिन गुस्सा नहीं आया बच्चों को असुर होने पर भी बच्चे होने पर भी तुम खेल कूद बंद करो धर्म का आचरण करो। देखिए जन्म दिया माता पिता भी बोलते ना बच्चों को, बच्चा भड़क जाता है और ज्यादा रटखट करता है कि नहीं,
लेकिन इधर एक मित्र प्रहलाद महाराज थे, उनके अंदर सद्गुण भरे हुए हैं, उनके हृदय में इतना करुणा भरा हुआ है, ने सीधा इंस्ट्रक्शन दिया। उन्होंने कहा आचरे धर्मा, आचरण करो। किसका आचरण करो? धर्म का आचरण करो, खेलकूद को त्याग करो। एकदम बिल्कुल पावरफुल इंस्ट्रक्शन है। ऐसा बच्चों को घुमा फिरा के बोलना पड़ता है, बोलते हैं ना, तो बच्चों को थोड़ा सा कुछ मिठाई दो, खिलाओ, प्रेम से समझाओ। प्रहलाद महाराज ने ऐसा कुछ उल्टे शब्दों से या अपरोक्ष शब्दों से इनडायरेक्टली नहीं कहा, सीधा उन्होंने कहा, डायरेक्ट प्रीचिंग। जैसे हम लोग कई कॉलेज में जाते इधर उधर जाते ना, इनडायरेक्ट प्रीचिंग होता है ना, प्रहलाद महाराज ने ऐसे इनडायरेक्ट प्रीचिंग नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट प्रीचिंग, आचरे धर्म। तो इसका रिजल्ट क्या है, पहले ही कहा गया है। प्रहलाद महाराज का गुणों का प्रभाव की वजह से, एक आचार्य ने कहा, उनके गुणों के प्रभाव से प्रवचन बच्चों को समझ में आए नहीं आए वो बात तो है ही नहीं, लेकिन खाली उनकी वाणी सुनने मात्र से, उनके गुणों के प्रभाव से इन बच्चों ने क्या किया, अपना घर के प्रति, अपना शरीर के प्रति आसक्ति को त्याग किया। और जो भी व्यक्ति इस अध्याय को ध्यान से पढ़ता है, सुनता है और विचार करता है, समझ में आए नहीं आए, केवल खाली उन श्लोकों को अध्ययन करता है, उसको अपने शरीर से, अपने परिवार से अनासक्ति हो जाती है। इससे जिसको अपने शरीर से और परिवार से आसक्ति रखना है, ये अध्याय मत सुनिएगा। बात ये, जिसको ये शरीर और घर परिवार से आसक्ति नहीं रखना है, तो उनको ये अध्याय है, उनके लिए खास करके अध्याय है। तो प्रहलाद महाराज ने सीधा कहा कि आचरे धर्मः, आचरण करो, धर्म का आचरण करो। तब जैसे उन्होंने कहा धर्म का आचरण करो, तो एक बच्चे ने पूछा कि अरे ये धर्म, हम तो बड़े लोगों के लिए, हमारा धर्म क्या है? बच्चे क्या धर्म होता है? क्या कोई धर्म तो होता ही नहीं है, ना गृहस्थ धर्म होता है, ना कोई वानप्रस्थ धर्म होता है, ना कोई ऐसा ब्रह्मचर्य धर्म भी क्या बोल सकते हो, क्योंकि अभी तो बच्चे है, पांच साल का वो ब्रह्मचारी बोले क्या, वो तो बंदर है कि नहीं, पांच साल का बच्चा तो बंदर होता है, उसके बाद उसको थोड़ा सा ब्रह्मचारी बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी कौमार अवचरित मतलब पांच साल, पांच साल के नीचे ही समझ लीजिए, तो पांच साल का बच्चे को ब्रह्मचारी ग्रस्त समझ में क्या आता है? तो धर्म का अर्थ क्या है इधर, कौमारे आचरे धर्म। साधारण तरीके से लोग जब धर्म शब्द सुनते हैं क्या सोचते हैं, धर्म शब्द का अर्थ क्या है, वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जैसे पांच साल का बच्चा है तो ब्राह्मण क्या है, वो तो अभी तो इसका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, उसको क्षत्रिय बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते है कि नहीं। पांच साल के बच्चे से ज्यादा ज्यादा कुछ बोल सकते तो बंदर बोल सकते, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते उसको। तो ये बच्चे ने कहा कि ये सब तो बड़े लोगों के लिए है, ये बच्चों के लिए थोड़ी ना ये धर्म वगैरह वगैरह सब चीजें, आचरे धर्म हम कैसे करें, हमको तो खाली खेलकूद करना मालूम है। अगर पालन करने भी जाएंगे क्षत्रिय धर्म का, किसके ऊपर हम राज करेंगे? अगर कोई बोले ब्राह्मण का, हमको तो कोई मंत्र तंत्र तो आता नहीं है, अगर आ भी जाता है तो फिर कोई तो बुलाता नहीं है, हमारे संस्कार करो तुम आके, हमारा कुछ विधि करो, कोई तो बोलने वाला नहीं है, हमको उपदेश सुनो, तो ब्राह्मण का धर्म ही नहीं हो पाएगा। तब प्रहलाद महाराज ने एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वर्णाश्रम धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कौन सी धर्म की बात कर रहा हूं, भागवतान। तो ये शब्द आया भागवतान, प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं बच्चों को। उस बच्चे ने जब प्रश्न पूछा होगा या मन में बच्चे को प्रश्न मन में आया होगा कि हम धर्म को कैसे पालन करें, तब प्रहलाद महाराज खंडन कर रहे हैं, मैं ये वर्णाश्रम धर्म की, कैतव धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। ये जो भागवत का दूसरा श्लोक में वर्णन हुआ है जिसमें कैतव धर्म का खंडन हुआ है। कैतव धर्म क्या है? कैतव धर्म है धर्मार्थ काम मोक्ष, जिसके अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म है, उसको पूरा खंडन किया हुआ है। उन्होंने कहा कि आपको ये भागवत में कैतव धर्म प्राप्त नहीं होगा, जिसको तमस कहा गया है, कैतव धर्म को तमस कहा गया, तो देखिए अधर्म को क्या कहा जा सकता है, आजकल जो अधर्म चल रहा है उसको क्या कहेंगे। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए सचिगर्भ सिंधु हरिंदु, वो क्यों प्रकट हुए, उनके ये जो तमस है उसको दूर करने के लिए प्रकट हुए। तमो, ये जो तमस जगत में है उसको दूर करने, क्या है वो तमस, वो तमस कुछ और नहीं, कैतव धर्म है, धर्मार्थ काम मोक्ष है, और ये वर्णाश्रम धर्म है, इसको कैतव धर्म जब कहा गया, इन्हें आर्थिक धर्म है, वो धर्म जिसके द्वारा हमारी इंद्र तृप्ति हो पाए, हो सके, भले ही वैदिक भी क्यों ना हो, ये वैदिक इंद्र तृप्ति को खंडन किया गया, इसको कैतव धर्म कहा गया है, इसको अंधकार कहा गया है। तो ये जो साधारण लोग जब भी धर्म शब्द सुनते हैं यही इसी के ऊपर स्मरण करते हैं, अच्छा हमारा धर्म है, मेरा धर्म है, मैं पिता हूं बच्चों को देखभाल करना मेरा धर्म है, मैं पत्नी हूं पति का सेवा करना मेरा धर्म है, तो मैं पिता मैं पुत्र हूं मैं देश में जन्म लिया हूं देशभक्ति करना मेरा धर्म है। साधारणता ये जो शारीरिक या आर्थिक के कई तब अलग अलग प्रकार के नाम है इसके ये कई तब धर्म है उसी को धर्म मानते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा मैं इस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगर ये धर्म को पालन करो भी करने जाओगे तो उसके लिए योग्यता की आवश्यकता है। मान लीजिए जो क्षत्रिय है तभी वो क्षत्रिय धर्म को पालन कर सकता है, तो ये बच्चा है तो उसके लिए ये जो आर्थिक धर्म है कैतव धर्म पालन नहीं कर सकता। तो प्रहलाद महाराज ने कहा ये सही बात है, जिस धर्म की बात तुम कह रहे हो वो धर्म पालन नहीं कर सकते हो। जब मैंने कहा आचरे धर्म, कौन सा धर्म की बात कह रहा हूं? भागवतम, भागवतान, भागवत धर्म की बात कर रहा हूं जिसका आचरण कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। खास करके सबसे बढ़िया सबसे अच्छी तरीके से भागवत धर्म जो है बचपन में ही हो सकता है, क्योंकि जैसे बड़े बड़े होता है ना, जैसे बड़ा होता है ना, ये जो कैतव धर्म आ जाता है मन में, इसलिए सबसे बेस्ट टाइम है ये भागवत धर्म को आचरण करने का, वो है बचपना। जैसे कौमारे पांच साल की आयु से, पांच साल की आयु क्या, जन्म लेने मात्र से उस समय से ही भागवत धर्म को आचरण करना सबसे आसान है, सबसे सरल है, क्योंकि मन में कोई टेंशन नहीं रहता वो टाइम में, कोई भी मन में और कोई मुझे ये करना है, इसका बिल भरना है, वो परीक्षा करना है, वो करना है, कोई सुनाने कुछ नहीं रहता एकदम, बिल्कुल जाके वो बच्चों को बोलेंगे हरे कृष्णा, वो भी बोले हरे कृष्णा। लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा होता है मैं क्यों बोलूं सोचता है, क्योंकि मन में कोई प्रदूषण नहीं रहता उस समय। तो इसलिए बेस्ट टाइम है भागवत धर्म का आचरण करने का, बेस्ट टाइम यही है। कब है वो? वो है कौमार। इससे उन्होंने कहा कौमारेत आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतान, ये भागवत धर्म को आचरण करने का सबसे एकदम बेस्ट टाइम, और कुछ अगर कुछ है तो वो कौमार अवस्था है, युवावस्था है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, जैसे उम्र बढ़ते जाएगा, ये सबसे सरल कार्य इतना मुश्किल हो जाता है। सबसे सरल कार्य है हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भागवत पढ़ना, कृष्ण के बारे में सुनना, कीर्तन में नाचना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे उम्र बढ़ता है उतना मुश्किल होता है। इसलिए बचपना एकदम बिल्कुल अच्छा है। देखिए जैसे बच्चे माता पिता बच्चों को लेके आते मंदिर में, कीर्तन में बच्चा नाचने लग जाता है, लेकिन माता पिता उसको रोकते हैं, क्या रुको रुको, और उनको नाचने में बहुत तकलीफ होता है और उनको जप करने में तकलीफ होता है, लेकिन बच्चा जो एकदम बिल्कुल अच्छा कर लेता है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में प्राय उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य के विषय में कहा, इससे जैसे बच्चा जन्म लेता है उन्होंने कहा थोड़ा सा पांच साल हुआ उसको ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग देना चाहिए। इतना हद तक कि प्रभुपाद जी अपने आजकल की आधुनिक नवीन व्याख्या जो सामाजिक स्थिति को वर्णन करने वाला है भागवत के दृष्टिकोण से, वो कहते हैं कि इतना हद तक कि माता पिता को प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप बच्चे को गर्भ के अंदर ही मार दो, पेट के अंदर ही मार दो, बाहर ही मत निकालो उसको। मान लो गलती से बाहर आ गया, छूट के बाहर आ गया, उसको क्या करो, उसको वापस मारो। कैसे मारो? वैसे तो मारेंगे तो जेल में जाएंगे, उसका दिमाग को खत्म करो। कैसे दिमाग को खत्म करो? उसके मन में भरो बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा एस्ट्रोनॉट बनेगा, वो बनेगा, ये बनेगा, वैसे वो सब दिमाग को खत्म किया जाता है। या दोनों पेट के अंदर खतल करो, या पेट के बाहर आने के बाद उसको कैसे खतल करो, उसका दिमाग को खतल करो, उनका उनके बुद्धि में बुद्धि को नाश कर दो। तुम्हारा जीवन का लक्ष्य इंद्र तृप्ति, इसके लिए अच्छा पढ़ाई करो, ये सब जितने भी बड़े बड़े मीठी मीठी बातें हैं माता पिता का, वो केवल वो उनको खतल करने के लिए। अभी वो माता पिता पांच साल छह साल तक कुछ कत्ल करने के लिए प्रयास करते उस बच्चे का, फिर भी नहीं हुआ तो क्या करते थे, कत्ल खाने में भेज दो, स्कूल में भेज दो, कॉलेज में भेज दो, क्योंकि मेरे से नहीं हुआ टीचर को बोले तुम उसका कत्ल करो भी, है कि नहीं। अभी मैं किसी तरीके से बच के बाहर आया, कॉलेज से बाहर आया, पास होके एक कागज का टुकड़ा लेके बाहर आया, वो बोला कि मेरा मैंने कुछ हासिल किया करके, जिसको डिग्री बोलते हैं, तब क्या करे बेटा, अभी शादी करो, अभी बम डाल दो उसके ऊपर तो अल्टीमेटली बच्चा पेट के अंदर मारते हैं या बाहर आके धीरे धीरे मारते हैं। अल्टीमेटली ऐसी मृत्यु जो है, ऐसा नहीं कि शरीर को मारेंगे तभी मृत्यु होता है, नहीं, उसका दिमाग को खत्म करना ही मृत्यु है। इट इज अ स्लो पॉइजन, इज अ स्लो डेथ, गेटिंग ए परसेंट स्लो डेथ। तो अपनी अस्तित्व में दिल की दुख को, प्रभुपाद जी अपना दिल का जो दुख है इस समाज को देख के, उनके हृदय में इतना अपार करुणा है, उसके द्वारा ये परपोट लिख रहे हैं। ये जो परपोट मैंने देखा आचार्यों की टीका में, इस प्रकार का वर्णन नहीं है। कोई भी आचार्य ने कतल खाना का वर्णन नहीं किया, बच्चे को पेट में मारा जाता है उसका वर्णन नहीं किया। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का जो ट्रेनिंग है वो अति अति महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्राह्मण आचरति, ब्राह्मण के स्तर में अपना जीवन व्यापन करना, ब्रह्म के स्तर में यानी आध्यात्मिक स्तर में अपना जीवन व्यापन करना ही हमारा मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अगर ये नहीं होगा, अगर गुरुकुल में बच्चों को अगर शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो बहुत बहुत मुश्किल है कृष्ण भक्त बनाना। जैसे अभी आपके जो कॉलेज प्रीचर है, जो कॉलेज में जाके प्रचार करते हैं, यूथ प्रीचर, उनको मालूम है। जैसे आप कोई बच्चा है, कोई कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है 17-18 साल में, उसको कृष्ण भक्ति देने भी जाओगे बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर उस समय कितना मुश्किल होता है, क्योंकि 17 साल तक अपने मन में कचरा भर के रखा है, अब उसको निकालना, उसको समझाना, प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर इतना उम्र मुश्किल है तो बाद में देखिए, हम जाके कांग्रीगेशन प्रीचिंग में जाते जब व्यक्ति का 35-40 होता है, उस समय कृष्ण भक्ति क्या है समझाना, करना, करवाना कितना मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर 5 साल की आयु से अगर गुरुकुल में अगर बच्चे को डालेंगे तो एकदम बिल्कुल आसानी से, अगर वो बाद में गृहस्थ बन भी जाता है कोई समस्या नहीं रहेगी, उसको मालूम है कैसे ब्रह्मचर्य पालन करना। आपको देखिए पिछले श्लोक में या पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी जो है गुरुकुल के ऊपर बहुत जोर देते हैं, बहुत जोर देते हैं, गुरुकुल होना चाहिए, गुरुकुल के बिना कोई समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। देखिए अंग्रेज जब आए इस राज्य को, इस देश को पालन करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए, बाद में राज्यों को आक्रमण किया, पूरा राज्य को वो लोगों ने राजा जैसे बन गए। लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा, भले ही हम राजा है लेकिन हमारी बात प्रजा मानती नहीं है, हमारी बात प्रजा नहीं मानती है, भारत देश वैसा का वैसा ही है, केवल हम सीट के ऊपर बैठे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भागवतम क्लास दे रहा है, टीचर है, वो बोलते बोलते जा रहा लेकिन कोई सुन नहीं रहा, उसको क्या महसूस होगा। तो ये अंग्रेजों को भी ऐसा महसूस हुआ कि हम तो नाम के लिए राजा है लेकिन भारतवासी स्वतंत्र है, अपने आप में जीवन में स्वस्थ है, एकदम बिल्कुल अच्छा चल रहा है उनका पूरा जीवन, हम उनके ऊपर राजत्व जता नहीं पा रहे हैं, उनको शोषण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक शोषण नहीं होगा, नियंत्रण के द्वारा ही शोषण होता है, बाय कंट्रोलिंग यू कैन एक्सप्लॉइट। अभी हमारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो पा रहा, तो क्या करें। तब वो लोगों ने एक कमिटी बना के बोला थे को अभी कैसा क्यों नहीं हो रहा है जरा पता करो। तो कमिटी लोगों ने बड़ा रिसर्च करके बताया, जब तक इस देश में गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जब तक इस देश में गुरुकुल चलता रहेगा जिसमें वैदिक सभ्यता को सिखाया जाएगा, शास्त्रों को सिखाएंगे, तब तक ये प्रत्येक व्यक्ति वो गुरुकुल से पास होने के बाद स्वतंत्र बन के निकलेगा, वो कुत्ता बन के नहीं निकलेगा। उसको पहले कुत्ता बनाना है तो आपको स्कूल और कॉलेज को खोलना होगा। तो तब उन्होंने सोचा अच्छा ऐसा है क्या। तो गुरुकुल को नाश करने के लिए, कोई भी गुरुकुल जो है कोई भी कार्य करने के लिए पैसे की जरूरत है। गुरुकुल कैसे चलते थे, वो चलते थे राजाओं के पैसे से या मंदिरों का जो पैसा है उससे गुरुकुल चलता था, मंदिरों का बड़ा बड़ा संपत्ति था उससे चलता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक एंडोमेंट्स एक्ट लाए जिसके द्वारा मंदिरों की संपत्ति सरकार का हो जाए, ताकि गुरुकुल जो क्षीण हो जाए, ब्राह्मणों की जो है वो पैसा मिलना वो सब बंद हो जाएगा। अभी भी मालूम है, एक मंदिर के पुजारी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट का नौकर हूं लेकिन अभी मेरा पगार 2 रुपए है। तो ब्रिटिशों ने वो समय में 2 रुपए पगार रख के रखा था ब्राह्मणों का, ताकि तुम मंदिर का संपत्ति हमारा, मंदिर भी हमारा, तुम्हारा पगार दिया जाए तो 2 रुपए। लेकिन अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, अभी भी 2 रुपए उसको पगार मिलता है। तो सारे जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको कंगाल बना दिया, मंदिरों का संपत्ति को हड़प लिया और गुरुकुल जो है बंद हो गए। साथ ही साथ में क्या किया, अगर आपको जेंटलमैन बनना है तो हमारा कॉलेज में आना होगा, हमारा स्कूल में आना होगा। तो इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन एजुकेशन एक्ट जो है वो दोनों लाए। जब तक आपको एक डिग्री नहीं मिलेगा तब तक नौकरी नहीं मिलेगा, तब तक आप ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ोगे तब तक आपको खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा इस प्रकार देश को बर्बाद करने के लिए दो एक्ट लाए। एक एंडोमेंट्स एक्ट अभी भी है, वो चालू है, अंग्रेज जाने के बाद भी वो सरकार ने उसको लागू रखा। क्यों? वैदिक सभ्यता को नष्ट करने के लिए। तो ये गुरुकुल को जब तक, क्योंकि जब गुरुकुल से जब बाहर आता है व्यक्ति तो वो नौकरी का इंतजार नहीं करता है, वो स्वतंत्रता से अपना जीवन जीने की उसकी कला सिखाई जाती है, भगवान के ऊपर निर्भर करना और उसके अंदर कुछ अपनी अपनी कला, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो भी वैश्य अपनी अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार अपना जीवन यापन करने की जो कला उसको सिखाई जाती थी। तो इसलिए वो नौकरी मतलब बहुत थर्ड क्लास चीज थी। इवन 25-30 साल पहले की बात भी मैं कहता हूं, नौकरी करना मतलब बहुत थर्ड क्लास चीज थी। लेकिन सभी लोग बहुत खुश होते हैं जब नौकरी मिलता है। तो हमेशा इस बात को मैं कहता हूं, अपने यूथ क्लास में कहता हूं, एक लड़का आया, ऐसे बैठा था, बहुत मिठाई बांटते बांटते आए, प्रभु जी मैं आपको ढूंढ रहा था, मैं मिठाई बांट रहा हूं। तो मिठाई दिया तो उसने पूछा कि मेरे को क्या इतना क्या खुशी है भाई, मैंने कहा प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा नौकरी मिल गया। मैंने बैठ बैठो तो मैंने कहा तो मेरा एक प्रश्न है उसका जवाब, तो आप बताइए प्रभु जी। तो वो पूछ रहा था कौन सी नौकरी है, क्या नौकरी है। मैंने उनसे पूछा तुमको नौकरी मिला ना? बोला हाँ मिला प्रभु जी। तो लकी नौकरी मिला तो बना क्या बताओ, क्या बना नौकरी मिलने से क्या बना तुम? तो समझ में नहीं आया उसको, मेरे को थोड़ा विचार करो, नौकरी मिलने से क्या बना? तो नौकर। इतना खुश हो रहे हो नौकर बनने में, इतना खुश हो रहे हो नौकर बनने में। तो जैसे भी स्कूल में थोड़ा सा, देखिए बचपन 5-6 साल तक उसको फर्क पड़ रहा है, लेकिन अभी तो थर्ड स्टैंडर्ड में ही, तो उसको पूछो, बच्चे को पूछो मुझे नौकरी करना है यानी नौकर बनना है। ये पूरा जो एजुकेशन प्रणाली है ये जो बना हुआ है वो व्यक्ति को नौकर बनाने के लिए है, वो मालिक बनाने के लिए नहीं है। देखिए MBA कॉलेज है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसके पास आउट होने के बाद एक व्यक्ति भी सोचता नहीं कि मैं अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूं। हर एक व्यक्ति सोचता है कोई और बिजनेस में मैं नौकरी करूं। तो नाम रखा क्या है? MBA। ये सदासत धोखा है, क्योंकि उसके ऊपर पास होने के बाद भी एक अग्रवाल मतलब खून में उसका व्यापार करने के रहता है। वो जाता है MBA में, बाद में सोचता है नौकरी करना, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं सोचता है। और उसका भाई होगा वो फेल हुआ रहेगा, वो बिजनेस खड़ा कर देगा, उसके भाई को नौकरी बना देगा तो अपने बिजनेस में। तो ये जितने भी शिक्षा की प्रणाली है, भौतिक ज्ञान की बात तो छोड़िए, आध्यात्मिक ज्ञान को बात तो छोड़िए, भौतिक ज्ञान को भी नहीं देता है। दे डोंट इवन गिव मटेरियल नॉलेज। बहुत बड़ा गलत फहमी है, आप सोचते हो कि स्कूल में बच्चा जाके, कॉलेज में बच्चा जाके भौतिक ज्ञान को प्राप्त करेगा, नहीं कर रहा है। अगर उसको नहीं भेजोगे तो और अच्छा रहेगा। तो आप बोलोगे प्रैक्टिकल कैसे है प्रभु जी, वो मुझे मत पूछेगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी नहीं हूं, खाली थियोरेटिकल हूं, वो प्रैक्टिकल आपका काम है। प्रैक्टिकल तो आपका काम है, लेकिन ये सत्य है, ये थ्योरी सच है। देखिए अगर प्रैक्टिकल कैसे होगा करके कोई गलत चीज को करेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई व्यक्ति ने मुझे बहुत आर्ग्यूमेंट किया, प्रभु जी ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो ठीक है प्रैक्टिकल नहीं है, चलो प्रैक्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत चीज को स्वीकार करो, कोई गलत चीज को स्वीकार करो। कहीं एक जगह कह रहा था गाय का दूध पीना चाहिए, देसी गाय का दूध पीना चाहिए। तो उसने कहा प्रभु जी आजकल प्रैक्टिकल नहीं है, मिलता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जहर पियो। तो प्रैक्टिकल कैसे करें वो सोचो, इतना दिमाग लगा रहे हो वो प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए इम्प्रैक्टिकल चीज को करने के लिए जा रहे हो। वो इम्प्रैक्टिकल जो लग रहा है उसको प्रैक्टिकल करने का प्रयास करने में हमारा शक्ति लगाना चाहिए। ठीक है जो भी है, क्योंकि प्रभुपाद ने पिछले परपोर्ट में गुरुकुल के बारे में कहा, अभी थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा, इससे मैंने थोड़ा सा ये इन बातों को कहा। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं जो कई तो धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। कौन सा धर्म की बात कर रहा हूं? भागवत धर्म की बात कर रहा हूं जो किसी भी समय किया जा सकता है। किसी भी समय प्रहलाद महाराज ने दिखाया भागवत धर्म को गर्भ में भी किया जा सकता है, ध्रुव महाराज ने दिखाया बचपन में भी किया जा सकता है, अम्बरीश महाराज ने दिखाया कि युवावस्था में किया जा सकता है, अजाबिल में दिखाया हमको वृद्धावस्था में किया जा सकता है, और चित्रकेतु ने दिखाया वो नरक में भी किया जा सकता है, ही कैन डू आफ्टर लाइफ ऑल्सो। यानी प्रत्येक अवस्था में भागवत धर्म को किया जा सकता है, भले प्रत्येक अवस्था में भागवत धर्म को किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट अवस्था है बचपना। तो अभी जैसे कौमारेत आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानि, तो प्रश्न आया कि अभी क्यों करें, अभी बचपना है ना, थोड़ा खेल कूद कर देते, थोड़ा खेल कूद बाद में कर लेते हैं ना, थोड़ा बेद दान बाद में कर लेते हैं, जैसे बच्चे का स्वभाव होता है कि नहीं, कि अगर आप कुछ बोलोगे ना बाद में, पढ़ाई करने के बाद बाद में। तो एक बच्चे ने कहा ये बाद में भी हो सकता है ना, तब प्रहलाद महाराज ने एक बड़ा सा बम डाला, उन्होंने कहा कि दुर्लभम मानुषम जन्मा, एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, एक बुद्धिमान व्यक्ति वो जानता है, क्या जानता है, ये मनुष्य जन्म क्या है वो दुर्लभ है। यानी दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज ने कहा एक प्रज्ञा बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा इस बात को जानता है, किस बात को जानता है, मैं कभी भी मर सकता हूं। बुद्धिमान मतलब यह है, बुद्धिमान मतलब यह नहीं कि प्लान बनाता है, अच्छा अच्छा प्लान बनाता है, मैं कल क्या करूं, परसों क्या करूं, वो करूंगा ये करूंगा, अभी अभी मैंने इतना फिक्स डिपॉजिट किया, बाद में ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, भले कर भी लेता है उसको मालूम है, क्या मालूम है, आई कैन डाई एनी टाइम। ये प्रज्ञा शब्द का ही अर्थ है, प्रज्ञा मतलब कौन है, प्राज्ञा, प्राज्ञा मतलब क्या है, जो जानता है, जिसकी बुद्धि तेज है, किसकी बुद्धि तेज है, वो उस व्यक्ति का बुद्धि तेज है जो जानता है आई कैन डाई एनी टाइम, कैन डाउ इमीडिएटली, कोई भरोसा नहीं है इस शरीर के ऊपर, इस शरीर और शरीर संबंधित वस्तुएं, इसे जितने भी भौतिक जगत में जितने भी हम सिक्योरिटी डिपॉजिट बनाते हैं, इसके ऊपर भरोसा करना से बढ़कर कोई मूर्खता नहीं है, हु इज ए फूल, मूर्ख वही है जो इस शरीर और इस शरीर से संबंधित वस्तुओं के ऊपर भरोसा करता है, मेरा बच्चा बचाएगा, मेरा पति बचाएगा, मेरा ये करेगा वो करेगा, ये जो इसको मूर्ख कहा जाता है, असत सैनिशु, ऐसे सैनिकों के ऊपर निर्भर करना जो मरने वाले हैं, जिनका खुद का ठिकाना नहीं है, उनके ऊपर भरोसा करने से बढ़कर मूर्खता क्या है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है, इसको प्राज्ञा वही व्यक्ति है जो इसको निश्चित रूप में जानता है। प्रहलाद महाराज का तो बुद्धिमान हो कि नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, क्या जानता है, मैं कहीं मर सकता हूं, कहीं मर सकता हूं। तो एक बच्चे ने पूछा नहीं कभी मर सकते, ठीक है अगले जन्म में कर लेंगे, अगला जन्म होता है करके सुना हमने, अगले जन्म में करेंगे। प्रहलाद महाराज ने कहा कोई भरोसा नहीं कि अगले जन्म में मनुष्य बनोगे, अगले जन्म में मनुष्य बनोगे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसी जन्म में मनुष्य जन्म मिला है, और दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म जो है दुर्लभ है, तो दुर्लभ होने के नाते पता नहीं तुमको प्राप्त हो गया है, इसलिए एकदम बिल्कुल उपयुक्त मौका है, ये उम्र भी तुम्हारा ठीक है और तुम्हारा जन्म भी एकदम ठीक है, क्योंकि बाद में उम्र निकल जाएगा, अगर उम्र नहीं निकले शरीर निकल जाएगा, बाद में क्या भरोसा, कुत्ता बने बिल्ली बने किसको क्या मालूम, इसलिए दुर्लभम मानुषम जन्म, तो इसलिए बुद्धिमान हो तो ये पहचानेगा, बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को पहचानेगा मैं कभी भी मनुष्य बन सकता, कभी भी मर सकता हूं, और अगले जन्म में कोई भरोसा नहीं मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं है, इसलिए शास्त्र में कहा गया है इस बात को, उत्तिष्ठा जागृता प्राप्यावराम निबोधदा, उत्तिष्ठ जागृता, जागो जागृत रहो, अवेक वेकअप, अरेज वेकअप, हमारे देश को लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल, लेकिन इतना नहीं है स्पिरिचुअल, लेकिन है उत्साह दिला देता उसका किताब पढ़ने से, नाम नहीं लूंगा इधर में उपनिषद का श्लोक को फेमस कर दिया, लेकिन किसी को मालूम नहीं उपनिषद का श्लोक है वेक अप अरेज, ये सब चीज, तो ये उपनिषद का श्लोक है, उत्तिष्ठा जागृता प्राप्यावराम निबोधदा शूरस्य दारा अनिता दुरुत्तया, ये जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है, इससे जागो वेकअप उत्तिष्ठ जागृत रहो, बी अवेयर, तो इसलिए दुर्लभ मानुषम जन्म ये इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म जो है दुर्लभ है, इट्स वेरी वेरी रेयर, मिल गया किसी न किसी तरीके से, इसलिए अभी करो, स्टार्ट नाउ इटसेल्फ। खास करके प्रहलाद महाराज ने एक शब्द इस्तेमाल किया, ये ध्यान देने लायक है, इहा धर्मान भागवतान इहा। इहा शब्द के अनेक अनेक अर्थ है। श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं प्रहलाद महाराज का उद्देश्य ये था कहने में इहा शब्द के पीछे, उन्होंने कहा कि अभी करो, क्योंकि तुम्हारा मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, वो भी कहां, इस भारत भूमि में प्राप्त हुआ है, भारत भारत वर्षेषु जन्म, उन्होंने कहा इस भारत भूमि में जन्म हुआ है, यह शब्द का ये भारत भूमि हुआ, केवल मनुष्य जन्म नहीं, वो मनुष्य जन्म भी कहां हुआ है, भारत भूमि पे हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि पे जन्म होते जार जन्म सार्थक करी, तो क्यों इस्तेमाल किया है भारत भूमि पे, क्योंकि भारत भूमि में जन्म जीने दिया ना, भारत भूमि में, भारत में जिसका जन्म हुआ है, जन्म मात्र हुआ है, चाहे कोई भी परिवार क्यों ना हो, भूल जाइए कोई भी परिवार हो, ऐसे कुछ भी परिवार में क्यों ना जन्म लिया हो भारत देश में, उसका शरीर जो है ना, उसका डिजाइन कैसे मालूम है, केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए, और किसी चीज के लिए बना नहीं है, और किसी भी चीज के लिए नहीं बना है। तो एक लड़का कह रहा था प्रभु जी आजकल सब एकदम बिल्कुल मेक इन इंडिया का चल रहा है। मैंने कहा कितना भी मेक इन इंडिया हो ना, जब तक विदेश का स्टैंप नहीं होगा तब तक खरीदेगा नहीं, कितना भी इधर बनाओ, बाहर लेके जाओ वापस आओ तब लेंगे तब, लेकिन इधर का चीज लेंगे ही नहीं, क्योंकि जन्मतः हमारे यहां विश्वास ऐसा है कि भारत का कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है, खास करके आधुनिक चीजें जो ना वो नहीं होता है, क्यों मालूम है, क्योंकि भारत में जन्म लिया हुआ व्यक्ति का दिमाग बुद्धि ये सब चीज बनाने के लिए नहीं बना है, वो केवल गीता भागवत पढ़ने के लिए बना हुआ है। कितना भी प्रयास करो, आप कितना भी अच्छा रोड बनाने के लिए प्रयास करो, अमेरिका का एक छोटा सा गली का रोड के बराबर भी नहीं होता है, हाईवे बनाया वापस इतने गड्ढे हो गए, मोबाइल बनाया वो हैंग हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके लिए नहीं बना है, हमारा जो मन है दिमाग है वो विज्ञान के लिए नहीं बना है, इट इज नॉट मेंट फॉर दैट, बाय डिजाइन बाय डिफॉल्ट। ये जो शरीर है खास करके मनुष्य शरीर, वो भी भारत में जो जन्म लिया ना, उसका शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। तब बोलोगे प्रभु विदेश में, अब देख सकते हो जब विदेशी लोग कुछ करते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं, क्या क्या होता है एकदम बिल्कुल, वो देख सकते हो क्वालिटी क्या रहता है, हाँ जब वो इंद्र तृप्ति करते हैं उसका भी क्वालिटी रहता है। ये सही बात है, इधर करने जाता है तो एकदम बिल्कुल। अभी देखिए गधा गधा ही रहेगा ना, वो घोड़ा नहीं बन सकता, ये इम्पॉसिबल। सो हमारा डिजाइन जो है वो केवल गीता भागवत पढ़ने के लिए बना है, और उस पढ़ के उस जन्म सार्थक करके दूसरों को उद्धार करने के लिए बना है, इट इज जस्ट मेंट फॉर दैट। तो इसमें आप जिसके लिए बने वो करो, इसमें सक्सेस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, अगर वो गाना शुरू करे तो उससे अच्छा छोड़ो ना, तुम्हारा इसके लिए नहीं हुआ है, यू आर नॉट बॉर्न फॉर सिंगिंग, भगवान ने वो कला नहीं दिया है, तो छोड़ो, जिसमें कला दिया उसके ऊपर आप ध्यान दो, सक्सेस होगा, है कि नहीं। मान लो किसी का कोई मैथमेटिक्स में फेल हुआ टेंथ में, लेकिन मम्मी बोलते हैं इंजीनियर बनेगा मेरा लड़का, क्या इंजीनियर बनेगा, वो टेंथ का भी मैथमेटिक्स नहीं कर पाया तो क्या, नहीं नहीं नहीं, हम किसी भी तरीके अच्छे कॉलेज में, कितना भी अच्छा कॉलेज में डालो, कितना भी अच्छा टीचर जानो, उसको एक प्लस एक दो बोलना भी मुश्किल होता है, वो क्या सिखाएगा, नहीं हो पाए, इट इज इम्पॉसिबल। आप IIT 10 खोलो 15 खोलो पूरा 50 खोलो, नहीं हो पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बाई डिजाइन बाई डिफॉल्ट इधर जन्म लिया मतलब केवल आध्यात्मिकता के लिए, गीता भागवत वेद अध्ययन के लिए बना है, और किसी के लिए नहीं बना है, बाकी सब चीजें छोड़ो। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, पता नहीं आप में कितने लोग मानेंगे कि नहीं, जो विदेशी कपड़े होते हैं ना जब भारत के लोग पहनते हैं ना, कितना गंदा लगता है, अगर वो लोग पहनते हैं एकदम बिल्कुल नॉर्मल लगता है, कुछ खराब नहीं लगता, सच में जब वही पहनता है ना तो एकदम लगता है क्या, कहां से टपोरी जैसे कहां से आ गया, लेकिन जो विदेशी व्यक्ति पहन के आता है उसको टपोरी नहीं बोलोगे। सही बात है, सही बात है कि नहीं? इट इज ट्रूथ। हाँ, जब देखिए अगर यहां के जो कपड़े हैं अगर विदेश के लोग पहनते हैं, हम लगते हैं क्या पहना है भाई। ए इज अ फैक्ट, क्योंकि वो बाय डिजाइन बाय डिफॉल्ट जो है, ये यहां शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, खास करके मनुष्य जन्म, वो भी मनुष्य जन्म कहां? भारत में। तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनका जीवन बना है केवल सुबह उठ के भगवान का आराधना करना, जप करना, मंगलाती करना, भागवत पढ़ना, केवल उसी के लिए हुआ है। थोड़ा बहुत काम काज हो गया, थोड़ा मिल गया, जो मिल गया उससे खुश रहने के लिए हुआ है, इसी के लिए बना है। और लास्ट उदाहरण देता हूं, अब देखिए इंद्र तृप्ति के लिए पाश्चात्य देश में या जानवर प्रयास करते हैं क्या? आराम से मिल जाता है। इंद्र तृप्ति जो है जानवरों को और अन्य जितने भी राज्य में लोग रहते हैं उनको बहुत आसानी से मिलता है, बहुत आसानी से मिलता है, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ता। देखिए कोई कंपनी में भारतीय काम करता है ना, वो सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे काम करता है उसी कुछ पैसे कमाने के लिए। लेकिन उसी कंपनी में कोई विदेशी होगा ना, उसको कम समय में उससे ज्यादा पगार मिलता है, 5 बजे मतलब निकल जाते लोग, निकल के क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति कंपनी से 11 बजे निकलेगा, घर में आने का भी परेशान होगा, नहीं है, इट इज नॉट देयर। आपके कर्मों में जो इस देश में जन्म लिया है उसके कर्मों में भोग नहीं है, इट इज नॉट देयर। आप कुछ अच्छा समझो बुरा समझो ये सत्य बात है, इसे करने मत जाओ, अगर नहीं तो वो क्यों करते हो? इट इज नॉट देयर। इसे धर्मान भागवतान, यहां मान लो कोई सोचे ठीक है जन्म तो हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, हम मैं विदेश जाके नौकरी करूंगा, उधर जाने का उसका हालत और खराब, उधर जाने में उसका हालत और खराब हो जाता है। वो सोचता है कि इधर भोग नहीं है, मैं उधर जाके भोग करूंगा। करने के लिए भी जाओ ना, जन्म कहां हुआ है? हाँ, एक गधे को सूट बूट पहनाओगे तो क्या रहेगा? नहीं, टाई भी पहना दो नहीं होगा, चेंज नहीं हो सकता। इसलिए ये बात समझना चाहिए, especially the bodies which are born in this land just meant for spiritual life, nothing else, koi bhi kaam ke liye nahi hai, isliye best hai kya karo, isme lago, jisme success honge usme lagana, wo buddhi mat hai ki nahi, jaise dharman bhagavataniha। To baad mein aur ek shabd hai durlabham, koi prashn puch sakta hai ki agle janam mein kar lenge, chalo युवावस्था में कर लेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे, नहीं, दुर्लभ है। ये जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है वो भी भारत भूमि में प्राप्त हुआ है, ये दुर्लभ है, ये ऐसे 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 व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। पता नहीं कौन सा पुण्य कर्म किया है उसी के वजह से प्राप्त हुआ है, इसलिए करो। तो दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अद्रुवम, कोई प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है मनुष्य जन्म तो प्राप्त हो गया भारत में, आपने बोला एकदम बिल्कुल सही है प्रहलाद महाराज, कोई बच्चा पूछ सकता है, लेकिन हमने सुना जो ये भागवत धर्म की सिद्धि यानी मोक्ष की प्राप्ति हो या भगवान की प्रेम की प्राप्ति हो बहुत लंबा समय लगता है, ध्यान रखिएगा बहुत लंबा समय लगता है, और मनुष्य जन्म तो बहुत छोटी समय के लिए है, तो प्राप्त कैसे होगा? ध्यान में आए, भक्ति करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उसके लिए ऋषि मुनि हजारों साल निकाल देते, इतना लंबा समय लगता है। तो आपने बोला कि मनुष्य जन्म जो है वो कभी भी, या मनुष्य जन्म कभी भी छूट सकता है। मान लीजिए आपको किसी ने कहा मार्केट जाके सब्जी ला के आओ, लेकिन रास्ते में आतंकवादी कभी भी मार सकते, जाओगे आप? कभी भी मर सकता हूं सब्जी लेने के चक्कर में, कभी मर सकता हूं। तो मैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के चक्कर में ये शरीर कभी भी छूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं शरीर का, और जितना समय मिलता है उसे इंद्र तृप्ति कर लो, क्या आर्ग्यूमेंट है देखिए, वो असुर बच्चे थे लेकिन हमसे बुद्धि मानते तो ये आर्ग्यूमेंट था तब। इसीलिए उस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में प्रहलाद महाराज ने कहा, अपि अध्रुवम, अध्रुवम होने पर भी, क्या ये शरीर जो है नश्वर होने पर भी क्या है, ने क्या कहा, अर्थदम। पूरा प्रभुपाद जी का व्याख्या इसके ऊपर है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो वयात्। बीच में मर भी जाओगे ना चलेगा, जब करते मर भी जाओगे ना चलेगा, लेकिन इंद्रियुक्ति करते हुए मर जाओगे ना कुत्ता बनना पड़ेगा। क्यों? हाँ, जब करते हुए मरना अच्छा है, भागवत पढ़ते पढ़ते मरना अच्छा है, लेकिन हाँ? सोते सोते मर गया, खाते खाते मर गया, हाँ? क्या है? तो इन लोगों का बुद्धि ऐसा है, मरना है तो जितना हो सके उतना एंजॉय करके मरो। प्रहलाद मन ने कहा, हाँ सही बात है, अपि होने पर भी, क्या होने पर भी, अध्रुवम होने पर भी क्या है ये शरीर, अर्थदम, कुछ अर्थ है ये शरीर जो है, मनुष्य शरीर जो है उसके, वो आपकी जो वास्तविक अर्थ है कृष्ण प्रेम है, संसार की जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे हो जाना, ये जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए एकदम बिल्कुल योग्य है ये शरीर, उसी के लिए बना है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये क्षणभंगुर है शरीर, इसलिए जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ, बहुत तीव्र से करो, क्योंकि कभी मर सकते हो, लेकिन कभी भी मर सकते हो इस बात के ऊपर डेरी, मरना ही है चलो यार छोड़ दो, इसको सुन के आलसी मत हो जाना, क्या करो और विश्वास के साथ करो। इससे आप जानते हो उपदेशामृत में जो शब्द आया है, उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह, उत्साह जो है उत्साह से करो, क्यों, क्योंकि कहीं मर सकते हैं, इसे जल्दी जल्दी करो, उत्साह से करो, लेकिन खाली उत्साह रहेगा ना, निश्चय के बिना क्या होगा, छोड़ दोगे, इसे निश्चय कहा। तो ये निश्चय को स्थापित करने के लिए अर्थधम, ये शरीर जो है निश्चित रूप में तुमको फायदा देगा, ये शरीर जो है भक्ति करोगे उसी में तुम्हारा फायदा है, ये जान के रखो, ये मान के रखो। इस विश्वास को दिलाने के लिए प्रहलाद महाराज ये जो अर्थदम, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, अर्थदम के द्वारा क्या हो रहा है, विश्वास दिला रहे प्रहलाद महाराज, कोई और चीज का चिंता मत करो, ये शरीर मिला है उसमें भक्ति करो तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कर लेन सर्व कर्म के तो है, और जब क्या ना भागवत पढ़ा तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, हो गया बस इसी इतना ही करना है, मेरा जीवन सक्सेस है, कुछ भी हो जाए, कोई मर जाए, कोई मुझे गाली दे, कुछ भी हो जाए, कुछ फर्क नहीं है, मेरा जप हुआ, मेरा भागवत हुआ, मेरा ठीक हो गया। क्यों? इसीलिए 11वां स्कंध में कृष्ण स्वयं करते उद्धव को, बहुत सुंदर श्लोक है, सबको याद कर लेना चाहिए, नृतेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नभस्वेदितम पुमान भवाब्दिम नतारेत्सात्मा। वो श्लोक है अर्थधम के विषय में, कहा कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो अध्यम, ये जो निदेह है, ये मनुष्य शरीर जो है अध्यम क्या है, वो कैसा है, वो सुलभम, ऐसा लगता है बहुत सुलभ से प्राप्त हो गया, लगता है ना, जन्म हो गया बर्थडे मना लिए, बर्थ नहीं, पता नहीं क्या किया, कौन से जन्मों का कौन सा सुकृति किसके वजह से मिला है, दुर्लभ वस्तु आपको सुलभ मिल गया है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या, शिशु की टीका विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, वो एक अंधा व्यक्ति के हाथ में, एक मूर्ख व्यक्ति के हाथ में पारस मणि दोगे क्या करेगा, वो फेंक देगा उसको, सोचे पत्थर करके फेंक देगा। इसलिए प्राज्ञा बुद्धिमान बनो, क्योंकि आपके हाथ में योग्यता नहीं होने पर भी पता नहीं ये मनुष्य शरीर मिला है, गॉट दिस ह्यूमन बॉडी, ये शरीर जो है ना बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर शरीर है, जिसके द्वारा आप नाम जप कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम भागवत पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं, ये शरीर को केवल इन्हीं चीजों के लिए, कृष्ण के लिए ही यूज करना है, क्योंकि बना उसी के लिए है। कुत्ता का शरीर कृष्ण के लिए नहीं बना है, बंदर का शरीर नहीं बना है, खास करके जो मनुष्य शरीर खास करके भारत भूमि में मिला है, इट इज ओनली मेंट फॉर कृष्ण एंड नोबडी एल्स, इससे निदेह माध्यम बहुत ही दुर्लभ चीज जिसको मिलता नहीं है। देखिए संख्या में देखा जाए सबसे ज्यादा संख्या किसका है, जानवरों की संख्या ज्यादा है, यानी जितने जितने भटकते हुए आत्मा उनमें का बहुत ही दुर्लभ चीज ऐसे सुलभ मिल गया है, मिल गया है आपको हाथ में, क्या करो। ये किस प्रकार का है शरीर ने कहा सुप्लवम सुकल्पम, ये प्लवम सुकल्पम बहुत सुंदर शब्द है, सुकल्पम कृष्ण ने कहा सुकल्पम, देखिए कृष्ण की बात है, स्वयं कृष्ण इज टेलिंग, ने कहा कि प्लवम ये जो शरीर है कैसे है, एक नाव के बराबर है। कैसा नाव के बराबर है, सुकल्पम सुंदर तरीके से कल्पना करके मैंने बनाया है, भगवान की स्वयं बात है, वेल डिजाइंड बॉडी, हाँ वेल डिजाइंड बॉडी फॉर व्हाट, स्पिरिचुअल रिलेशन, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए वेल डिजाइन बॉडी चलेगा नहीं, अच्छा डिजाइन नहीं चलेगा, अगर अच्छा डिजाइन होता है तो इंद्र तृप्ति नहीं हो पाएगा, इट इज फैक्ट। तो प्लवम सुकल्पम साथ साथ में ये जो नाव को चलाने के लिए गुरु कर्णधारम, यानी गुरु को भी भेजा है कृष्ण, उद्धव कहते हैं कृष्ण कहते हैं मैंने गुरु को भी भेजा, गुरु कौन है, कैप्टन है उस शिप का, इसलिए क्या करो जैसे मनुष्य शरीर प्राप्त हो गुरु का शरण लो, क्योंकि कैप्टन के बिना एक नाविक के बिना नाव का कोई दिशा नहीं हो सकता है। और गुरु क्या करता है, तो उन्होंने कहा मया, कृष्ण ने कहा मया अनुकूल नभस्वेरितम, मया मेरे द्वारा दिया गया वचन है, मेरी कृपा है, भगवान मेरे मया अनुकूल है ना, मया अनुकूल मतलब मेरे द्वारा मेरी कृपा जो है, मेरा शास्त्र मेरी वाणी, श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान की आराधना से उत्पन्न हुआ भगवान की कृपा जो है, वो भगवान कृपा क्या है, वो हवा के बराबर है। पहले जमाने में मोटर वोटर नहीं रहा करता था, तो उस समय जहाज हवा से चलती थी, उसके लिए नाविक होना चाहिए, वो नाविक हवा के अनुसार वो अपना जो सेल के जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में चार्ज करके वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता था, उतना बुद्धि थी लोगों के पास। तो गुरु कर्णधारम नवम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम यहां अनुकूल नमस्वैरितम पुमान भवाब्दिम, इस प्रकार इस भवा भव सागर को पार करो, ये शरीर जो ऐसा सुंदर अर्थधम आपको उस अर्थ कृष्ण प्रेम नामक अर्थ को प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त साधन है, उपर्युक्त नाव है, जो इसको स्वीकार नहीं करता, इस बात को नहीं समझता है, उसका कहा गया है न तारेत, इतना सुंदर नाव मिलने के बाद भी न तारेत, तारण तर नहीं करता है, वो सोचता है कि मैं इधर ही रहूंगा इसी में इंद्र तृप्ति करूंगा, तो सोचता है आत्महा, आत्महा मतलब उसको आत्महत्या करने वाला है, ये तेज आत्महनो जनाः पशुघात पशुघात, ये शब्द आया भागवतम की दसवें स्कंद में भी आता है, जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, निवृत्त तर्शेर उपगीय मानात बहुषदा छुत्र मनोविनामात, क्या का उत्तम श्लोक गुणानुवादात तमाम विराजेत विना पशुघात, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कृष्ण के बारे में सुनना नहीं चाहता है, भक्ति नहीं करना चाहता है, निश्चित में एक व्यक्ति है जो सुनना नहीं चाहता, वो कौन है, पशुघ्नात कसाई है, वो एकमात्र व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, यानी दूसरे शब्दों में मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भक्ति में तीव्रता से, क्योंकि कभी भी मर सकते हैं, तीव्रता और विश्वास क्या है वो अर्थदम, विश्वास और उत्साह, उत्साह निश्चयात, ये दोनों के साथ अगर भक्ति नहीं करता है वो निश्चित रूप में कसाई है और कोई शब्द नहीं वापर सकते। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न है,
हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल क्लास। सब पूछते हैं जैसे हम प्रचार करते हैं, जैसे आपने बोला कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है या फिर सामाजिक सिस्टम ऐसा हो गया पूरा, तो अभी अगर हम वैदिक सिस्टम को अपनाते हैं कुछ लोग, तो क्योंकि समाज तो उसी पुराने सिस्टम पे चल रहा है जो खराब किया गया है, तो कैसे फिर जीवन व्यापन करेंगे, लोग पूछते हैं।
अच्छा प्रश्न है, प्रश्न है समाज तो ऐसे ही चल रहा है और वैदिक सिस्टम करेंगे तो कैसे चलेगा। आप बोलते हो समाज, समाज इन समाज में बहुत सारे समाज है कि नहीं, जिस चीज को समाज बोल रहे हो उससे बहुत सारे है, कि कोई गुजराती समाज है, कोई मारवाड़ी समाज है, कोई क्या क्या तो समाज आ गए, नए नए है कि नहीं, नए नए समाज निकल रहे हैं अभी, विदेश पाश्चात्य देश में तो कुछ और ही है। अभी अलग सीखिए कि मान लो कि कोई बिल्डिंग में एक सोसाइटी है, वो एक सोसाइटी, एक सोसाइटी है, हम भी और एक सोसाइटी करें। जब वो अपना नया सोसाइटी खोल सकते, हम नहीं खोल सकते। इसे प्रभुपाद जी क्या कहा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर साधारण सोसाइटी, यू हैव द फ्रीडम, डरो मत, स्टार्ट। कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखो एक कुत्ता है, आती है, उनको आप खाने को मिल जाता है ना। आप नया सोसाइटी करो, आप देखो पूरा सोसाइटी, जितना भी अन्य आने को सोसाइटी ना, वो सब हमारे पास आएंगे। क्यों मालूम है? अरे ये लोग इतना खुश कैसे है, ये लोग इतना खुश कैसे है। जैसे अनेकों अनेकों सोसाइटी है, ये मंदिर भी एक सोसाइटी है कि नहीं? लोग क्यों आ रहे बताओ, वाई आर दे कमिंग? अगर आप सोचे होते मंदिर खोलने को कौन आएगा, प्रभुपाद जी ऐसे सोचे होते कोई आता? मंदिर भी नहीं बता, कोई आता नहीं। विश्वास था प्रभुपाद, विश्वास था किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर विश्वास था। तो हमारा कृष्ण के ऊपर विश्वास करके हुए करो स्टार्ट। एक व्यक्ति ने, एक ब्रह्मचारी ने पूछा, प्रभु इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल। मैंने कहा जब आप ब्रह्मचारी बने सोचे थे क्या, जी रहे हो ना, खाना पीना मिल रहा है ना, वैसे ही माता पिता को सोचना चाहिए, मेरे बच्चे गुरुकुल में भेजूंगा, ये जो कागज का टुकड़ा मिले ना मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जी लेगा अपना। ठीक है, हम ऐसा गुरुकुल खोलेंगे, अगर वो बच्चा दसवीं या 15-17 साल का होता है, अगर चाहे तो बिना एग्जाम की तैयारी कर एग्जाम पास कर लेंगे, इतना सक्षम बनाएंगे। ऐसा गुरुकुल खोलो क्योंकि आपके बच्चे को प्रसाद खिलाओ, गाय का गोबर उठाने के लिए काम दो, और गाय का घी खिलाओ, और उनको भगवान का सेवा करने लगाओ, उसका बुद्धि इतना तेज हो जाएगा ना, उतना तेज हो जाएगा, तो उसको कौन सा एग्जाम बताओ, अच्छा मैथमेटिक्स, चलो बुक दो, देख लिया, अगला दिन एग्जाम के लिए तैयार। गाय का की वेस्ट थोड़ी ना जाएगा तो ऐसा गुरुकुल खोलेंगे, वो कोई भी एग्जाम दो पढ़ के पास हो सकता है, ऐसा सक्षम, ऐसा ऐसा गुरुकुल खोलेंगे। ऐसा नहीं, बातों में नहीं खोलेंगे ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी से जल्दी लोग जुड़ना चाहिए बस इट्स अ टाइम। पहले क्या था, हमारे पास इतना कांग्रीगेशन नहीं था, उतना आर्थिक और सामाजिक स्टेबिलिटी नहीं था इस्कॉन के मंदिरों में, इस्कॉन कोई मंदिर। अभी आर्थिक और सामाजिक जो स्टेबिलिटी है हो गया है, अगर उसको उसके ऊपर उसका फायदा नहीं लेंगे गुरुकुल खोल के, तो फिर ये उचित नहीं है। इसलिए इस्कॉन के जो आप जैसे लीडर्स है, सोचना चाहिए कि मैं कैसे इस प्रकार का गुरुकुल खोलूं, जिसमें बच्चों को पूरा आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाएगा और बौद्धिक शिक्षा भी दिया जाएगा, लेकिन बाहर का बौद्धिक शिक्षा नहीं, जो हमारा जो उनके स्वभाव के अनुसार जो बौद्धिक शिक्षा देंगे, ताकि वो बाहर का कोई भी एग्जाम पढ़ के आराम से पास हो जाए। आपको मालूम है कि आपने इंजीनियरिंग किया है, जो लोगों ने कितना पढ़ाई किया, एग्जाम के दो दिन पहले किया ना, इसलिए एग्जाम के दो तीन दिन छुट्टी देते हैं, 4-5 दिन, उनको सबको मालूम है, प्रोफेसर लोगों को भी यही पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम क्या है, 3 दिन में पढ़ के जब पास हो सकता है उसके लिए 4 साल क्यों बर्बाद करना, बोलो है कि नहीं। तो तो इसलिए हम लोग को बाकी सब जहां भजन करेंगे उनको 3 दिन देंगे, बुक दे देंगे, पढ़ के एग्जाम पास करो इसका प्रमाण भी है कि आजकल लोग कॉलेज, स्कूल कॉलेज जाता नहीं है, और धीरे धीरे बंद हो रहा है, और एक इसलिए सरकार ने खोला है, एक सिस्टम खोला ओपन यूनिवर्सिटी करके, उसको क्या स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, बुक देंगे पढ़ के एग्जाम दे दो, अगर कोई कागज का टुकड़ा चाहिए इतना ही वैल्यूबल है, वो करो उसके लिए हम ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन पढ़ाएंगे हम जो चाहे वो पढ़ाएंगे, इसलिए ओपन स्कूल अच्छा है। ठीक है, और कुछ आपने बोला प्रैक्टिकल चीजें बताया इसलिए इसलिए बच्चों को अपने स्कूल से निकाल दो, उसको वही सर्टिफिकेट मिलेगा। बारहवीं का ओपन स्कूल के बाद भी आईआईटी दे सकता है, आईआईटी कोचिंग ले लो चार महीने का, चाहे तो आईटी में जाना है तो, ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, जाना है तो, जिसको जाने का मन होता है तो। कभी लोगों को लगता है देख क्या हूं, देखो देख क्या हो, दरवाजा खुला है ऐसा है। और कुछ लास्ट? हाँ हाँ बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ
थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा क्लास दिया। बस छोटा सा एक प्रश्न है, जैसे अभी आपने क्लास में बताया है कि जो इंडियंस मतलब जिसका जन्म मनुष्य का भारतवर्ष में हुआ है, हमारा बॉडी सिर्फ मतलब हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है सिर्फ इसलिए है कि सिर्फ भागवतम और भागवत गीता पढ़ने के लिए, अगर हम कुछ और भी काम करेंगे तो चाहे बाहर जाके चाहे इंडिया में, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस एक छोटा सा प्रश्न है कि यूएस के अंदर 38% इंडियंस डॉक्टर हैं और 36% साइंटिस्ट नासा के अंदर हैं, जिसके अंदर से 5 मेन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अच्छे 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 लेवल पे 5 साइंटिस्ट इंडियंस ही हैं। तो इसके लिए आप कुछ बताएंगे प्रभु जी?
मैं पहले एक बात बताऊंगा, उसके बाद आपका प्रश्न जवाब बताऊंगा, ठीक। जो कंप्यूटर्स जानते हैं, जितने भी लोग कंप्यूटर में काम करते हैं विदेश में जाकर, इंडिया में कहीं भी हो, जितने भी भारतीय जाए, कितने लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है? हाथ उठाइए, कितने लोगों ने बनाया है? जो सिस्टम कौन बनाया? लेकिन गधा बन के जरूर गए, सब गधे का काम करते हैं, लेकिन काम निकालने के लिए पोस्ट दे दिया, पैसा दे दिया, लेकिन जो कोर, जिसको बोलते हैं कोर, जो कोर साइंस है, कोर इंजीनियरिंग है, ऐसे नहीं है, इट्स अ फैक्ट, कोई सोचता नहीं है। जो जाए बच्चे जब इंजीनियरिंग पास आउट होकर आईटी में हो, आईटी में करते क्या है? एक क्लर्क से भी गया गुजरा काम करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के सामने है। इसे एक कर्क से भी एक गया गुजरा काम है वो। इसलिए देखिए, कंप्यूटर पढ़ा नहीं है, वो मैकेनिकल पढ़ा है, बाद में वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ उन लोगों का बॉस बन जाता है। इसका मतलब क्या है? उसके साथ कुछ पढ़ाई का संबंध नहीं है, वो कुछ क्लरिकल वर्क, क्या कोडिंग क्या बोलते उसको, मैं गहराई से नहीं जानता हूं, लेकिन बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट बना के दिखाए इंडिया में, चलो और एक लिनक्स बना के दिखाए, बताओ ठीक है, उधर जाके क्यों बनो, इधर इसरो को करो ना, इधर करो ना, क्यों नहीं? क्योंकि ये जो आधुनिक विज्ञान जो है वो रजसिक है, तमसिक है, और इधर जो जन्म लिया है कुछ ना कुछ सात्विकता है, तभी इधर हुआ है, और उसके लिए वो जमता नहीं हो, इट इज नॉट फॉर देम, इट्स अ फैक्ट। उधर जाके करते क्या है? देन नो, इट्स नॉट। अगर ऐसे लोग अगर भागवत पढ़ने लग जाए, ऐसे लोग अगर गीता पढ़ने लग जाए, तो देखो कितना हो सकता है, इट्स नॉट बेंट, इट्स अ फैक्ट। और कोई लास्ट प्रश्न है के लिए?
थैंक यू।
हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आपने जो जवाब दिया वो बहुत ही अच्छा था कि यहां से जब कोई कंप्यूटर का डिपार्टमेंट हो या नासा में जब जाते हैं यहाँ के साइंटिस्ट, तो नासा के लिए जाते हैं, और कंप्यूटर के लिए चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो चाहे कुछ भी हो, हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, कुछ भी करते हैं उनके लिए करते हैं। ये सॉफ्टवेयर इसलिए तैयार कर रहे हैं कि उन्होंने कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर उन्होंने बनाया हुआ है, तो आपका जवाब सही है। लेकिन इसके साथ ही एक भी जुड़ा हुआ है कि हमारे भारत भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, हमें भोग के लिए नहीं, योग के लिए प्रेरित करती है, ये आप सही कह रहे हैं, इसलिए उसका इतिहास गवाह रहा है कि जब जब कोई योगी इन अध्यात्म के मटेरियल्स को लेकर के विदेशों में गया है तो विदेशों ने हमको फॉलो किया है, और जब हम कंप्यूटर या नासा के लिए जाते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं।
अच्छा बुद्धि।
और प्रश्न ये तो रहा, अगला प्रश्न जो प्रश्न मुझे करना है वो ये है प्रभु जी कि एक जगह आपने बताया कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जीवन बहुत ही मतलब निश्चित नहीं है, कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए आप प्रभु जी के चरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ। तो ये कह रहे हैं, आज के बाद आपने कहा कि इससे जीवन में आलस नहीं पैदा होना चाहिए, हमें उनकी बात मान लेना चाहिए। प्रैक्टिकल बात यह है कि हमें आलस नहीं पैदा होता है, क्योंकि आलस अगर पैदा भी हो जाए तो उस पर विजय पाई जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें आलस नहीं बल्कि निराशा पैदा होती है। निराशा यह होती है कि जब जीवन इतना शॉर्ट है और इसका कोई निश्चित है नहीं, तो अध्यात्म तो भोग विलास ही क्यों नहीं कर लिया जाए, ऐसा आम लोगों में ये निराशा ये भावना आती है, और अध्यात्म जो अपनाया हुआ है उसको निराशा होती है कि ये भी करने के बाद अगर हमको जीवन का गारंटी नहीं है तो इसको क्यों करें, ये निराशा पे विजय कैसी पाई जाए।
इसलिए उन्होंने अर्थदम कहा ना, इसी प्रश्न के लिए अर्थदम कहा। अर्थदम उसका और व्याख्या करते प्रभुपाद जी ने क्या कहा अपनी तात्पर्य, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, और थोड़ा सा भी कर लोगे ना मर जाओगे, अगला जन्म में वापस कंटिन्यू करोगे, चिंता मत करो। ये अर्थदम के ऊपर प्रभुपाद ने पूरा व्याख्या दिया। आपके पास भागवतम है, बुद्धिमान है आप, तो भागवतम को तात्पर्य को ध्यान से पढ़िए और इस बात का साक्षात्कार हो जाएगा आपका। मंत्रा श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।